جناب والا نے ایک آیت کریمہ لکھ کے بھیجی ہے، یہ سمجھنا مطلوب ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. نور سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. دنیا میں جتنا بھی نور اور لائٹ ہے یہ سب میٹر کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے. بجلی پانی سے یا مختلف ذرائع سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں روشنی آتی ہے. موم بتی جلائیں تو جلانے کے لیے اور جلنے کے لیے، اور اس جلنے کو جو موم کی صورت میں ایندھن فراہم ہوتا ہے، یہ سب کے سب مخلوق ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں آسمان اور زمین کا نور ہوں. تو وہ نور کیسا ہے، روشنی کیسی ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ کی جیسے باقی صفات ہیں ویسے بھی نور ہونا اس کی صفت ہے. حتیٰ کہ سورج جو نیچرل لائٹ کا سب سے بڑا سورس ہے، اس میں بھی ہیلیم گیس چلتی ہے تو پھر روشنی پیدا ہوتی ہے. اللہ اٹسلف روشنی نور کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس لیے یہ آیت کریمہ مفسرین کے نزدیک متشابہات میں سے ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کا نور نہیں، بلکہ اللہ اور زمین اور آسمان کو نور پرووائڈر ہے، منور کرتا ہے، نور دیتا ہے، رازق رزاق. کھانے والا نہیں، کھانا دینے والا، فیسلٹیز پرووائڈ کرنے والا. اس لیے نور اگر اللہ کی صفات میں مانا جائے تو یہ متشابہات میں سے ہے، قرآن کی محکم آیات میں سے نہیں ہے. اور محکم اور متشابہ کی تشریح کئی بار ہو چکی. مثل نور ہی کا مشکاتن فیہا مصباح. اور اس نور کی مثال اگر تمہیں سمجھنا چاہو، یہ مثالیں جو ہیں قریب ترین چیزیں اس کے حقائق کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. ادروائز مثال اور جس چیز سے مثال دی جا رہی ہے درمیان میں کوئی وجہ تشبیہ ہوتی ہے، باقی بسا اوقات دور دور کا فرق ہوتا ہے. اس کی نور کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے ایک تاک ہے، مشکات. تاک ہوتے تھے نا پچھلے زمانوں میں، جب بجلی نہیں تھی تو دیواروں میں تاک رکھتے تھے اور سرے شام اس پہ دیے رکھ دیتے تھے. تو ان دیوں سے گھر روشن ہوتا تھا. فرماتے ہیں ایسے سمجھو جیسے ایک چراغ ہے، ایک تاک ہے، کھڑکی ہے. مصباح، اور اس میں ایک چراغ چل رہا ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ نور کے قندیل میں، فانوس میں رکھا گیا. ایک تاک ہے اور اس تاک کے اندر ایک شیشے کا برتن ہے، اور شیشے کے برتن کے اندر ایک چراغ جلایا گیا ہے. آپ تصور میں لائیں، لیمپ کبھی کبھی جلتے تھے، تو لیمپ کو اٹھا کر اگر کسی تاک اور کھڑکی میں رکھتے، کھڑکی تو اب یہ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں کھڑکی اسے بھی کہتے تھے، اس میں رکھ دیا جائے تو خوبصورت سا تاک، اور اس تاک کے اندر ایک شیشے کا برتن، اور شیشے کے برتن میں چراغ رکھا ہوا. الزجاجہ، وہ جو चराग है कन्नहा कौ कबुन, वो इस तरह नजर आता है जिस तरह रोशन सितारा है, सबसे ज्यादा रोशन सितारा जोहरा है। जोहरा सितारा जैसे चमकता है ना, ये चंद दिन गुजरे रात को जोहरा सितारा नजर आता था, बहुत शदीद रोशनी उसमें देख के दिल खुश होता था अंधेरे में। अल्लाह जो कहता है ना कि मेरी निशानियों पर गौर करो, इन सितारों पे, वो जोहरा सितारे को कभी आप देखिए, उसकी चमक आंखों को चिंधियाती। अल्लाह फरमाते हैं कन्नहा कौ कबुन दुर्री, वो जो चराग चल रहा है ना उसमें बत्ती, वो ऐसे है जिसे रोशन सितारा। युकद मिन शजरतिन मुबारकतिन, और उस दिए में जो तेल पड़ा हुआ है वो एक बहुत बरकत वाले दरख्त का है, जैतूना, और उस बरकत वाले दरख्त का नाम है जैतून। कुरान जैतून को बड़ी बरकत की चीज करार देता है, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून की फजीलत भी बयान की है। और कुरान कहता है दूसरी जगह पर कि तखरुज मिन तूर सीना, और हां वो मुबारक दरख्त जो हमने पहाड़ों में पैदा किया है, और तूर सीना में, तूर पहाड़ में पैदा किया, तुम वो तो बिद्दो हम, इतना तेलदार है, इतना तेल है उस चराग में, उस दरख्त में, कि सर से लेके पांव तक उसमें चिकनाई ही चिकनाई है। जैतून का दरख्त आप देखें ना, हाथ लगाएं तो वह तेल टपकता है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि सिबगल लिल आकिलीन, और जो लोग खाने का मजा जानते हैं, टेस्ट जिनका डिवेलप हो गया है, वो रोटी को जैतून के तेल में डबो डबो के खाते हैं। और इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून के तेल में डुबो के रोटी को खाते थे, ताकि अल्लाह की इस बात पर अमल हो जाए कि अल्लाह ने कहा सिबगल लिल आकिलीन, खाने वाले रोटी डुबो के जैतून में खाते हैं इसके तेल। अल्लाह फरमाते हैं कि चराग रोशन तुम्हें नजर आ रहा है ना शीशे में, और उस सितारे की तरह इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तेल, और तेल किसका है, जैतून का। ना शरकियतिन वला गरबिया, और ऐसी लाइट चल रही है जिसका ना कोई मशरिक है ना मगरिब। मशरिक और मगरिब आप चराग का मुतायन कर सकते हैं, ये लाइट चूंकि ये सेंटर में ये लाइट मसलन है, तो अब इटसेल्फ सिंथ बाहर से है कि राइट हैंड है लेफ्ट है, वगरना नूर जो रोशनी है इसकी कौन सी सिंथ है, तो आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर अंदर हर तरफ है। ला शरकी है तुम वाला गरबिया रिकाद जैतुहा यदी, और ये जो तेल है इतना चमक वाला है कि खुद बखुद जल उठे। वलो लम तंसस नार, इतना बरकत वाला तेल है कि इसमें चमक रोशनी को खुद पैदा कर रही है, अगरचे से आग न भी छुए तो भी ये बिल्कुल सराफा तवानाई चिकनाई रोशनी। चौंसा पका हुआ, वो आम जब पकता है ना तो जो हिस्सा पेवस्त होता है शाख से ही मीठा होता है, और मिठास ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसलिए आप कभी गोलाई में चौंसा काटें और चौंसा हो कच्चा, तो नीचे वाला हिस्सा कच्चा मिलता है, ऊपर वाला पकाओ तो पका मिलता है। ऊपर से नीचे तक मिठास ही मिठास, गन्ना ऊपर से लेके नीचे तक गन्ना, जिस जगह पका हुआ वो रख दो और चूस लो। इसी तरह अल्लाह कहता है कि जैतून का तेल एक कतरा हो या प्याला भरा हो, वो तेल इतना जबरदस्त है, उसकी चमक देखो, कि अगर उस प्याले और चराग में तुम डाल दो और उसे आग ना भी छुए तो गोया बिल्कुल रोशनी दे रहा है। नूरन अला नूर, एक उसकी फिर रोशनी अपनी तेल की, और फिर वो जब तेल जलता है तो जो उससे रोशनी पैदा होती है, क्या कहने, क्या ही खूबसूरत चीज है। अल्लाह जिसको चाहता है नूर से हिदायत देता है। इसलिए कि नूर अगर रोशनी है तो रोशनी खुद कभी गुमराही का सबब बन जाती। मत मारी गई हो और नसीब फूटे हों तो बहरुल काहिल पे भी चला जाए, प्यासा वापस आ जाता है। बहरुल काहिल बादल बन के छा जाए और आदमी अपना गिलास अगर ऊंधा रखे ना तो छाजों पानी बरसे, एक कतरा इसके अपने बर्तन में नहीं आता, इसलिए कि अपने ही बर्तन उल्टा रखा हुआ है। अल्लाह किसी का बर्तन सीधा नहीं किया करता, बर्तन अपने खुद ही सीधे करने पड़ते हैं, अल्लाह रहमत बरसाता है। इसकी तशरीह दो चीजों से हो जाएगी। कहते हैं किस्सा है, हुदूद आया और उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि हजरत मुझे अपनी फौज में रख लें। हजरत ने फरमाया लश्कर तो पहले ही बतेरा है, तुम्हें फौज में रख के और बोझ डालना है, क्या करें, क्यों रख लें। उसने कहा हजरत मुझमें यह खूबी है कि आप फौजें लेके निकलते हैं सहराओं में जंगलों में, मैं जमीन की तह में पानी होता है ना तो देख लेता हूं, आपको पानी की बड़ी दिक्कत होती है, मुझे रख लें तो जमीन की तह का पानी मैं बता दूंगा, जिन्नात को कहीं खोद के और चंद मिनट में पानी आपके सामने। कहा तो बड़े काम का है। कोई और जानवर खड़ा था, मसलन कौवा खड़ा था, तो कौवे ने कहा हजरत झूठ बोलता है, ना रखें इसे। उनका भी ये तुम्हारी शिकायत आ गई। उसका दलील क्या है, उसका हजरत इससे पूछें कि पानी समंदर की तह में नजर आ जाता है तो ये शिकार कैसे होता है। हजरत ने पूछा उसका, अगर कोई दाना अनाज का होता है और मैं उसके लिए जब चोंच मारता हूं तो जाल ऊपर से गिर जाता है, तो हंसा दूसरा कौवा या कोई उसे कहा कि इतना छोटा सा जो जाल लगा हुआ होता है वो नजर नहीं आता, इतना छोटा सा दाना नजर आता है, जिसको जाल नजर नहीं आता उसको जमीन के तह में पानी नजर आता है। जाल नहीं देखते और पानी को देखते हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वाकई बात तो है। उसे कहा हजरत ये सच कहता है, जब तकदीर गालिब आती है ना तो फिर जाल के सामने आंखें अंधी हो जाती। इसलिए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे नऊज़ु बिल्लाहि मिनल हूर बादल हूर, अल्लाह आंखें मिलने के बाद अंधा हो जाऊं तेरी पनाह मांगता। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे नऊज़ु बिल्लाहि मिन जमीअल फितन, अल्लाह जिंदगी की तमाम आजमाइशों से मुझे बचा, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो अब तक पेश आ गई और जो आइंदा कहीं तकदीर में छुपी हुई है, अल्लाह इम्तिहानों से बचा। चौकन्ना रहे, गाफिल हुआ और मारा गया, आंखें खोल के जिए, रोशनी ले डूबती है। नया नया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया, शोहरत हुई, उलमा में मसला चला कि काफिर है या मुसलमान है, तो रामपुर में एक दावत थी नवाब साहब के बेटे की, बड़े बड़े उलमा हिंदुस्तान के शरीक थे, तो किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा इतने मौलवी जमाओ लुधियाना के देवबंद के गंगोह के, फैसला करो इसे काफिर है या नहीं। लुधियाना के उलमा ने कहा काफिर है, नबूवत का दावा किया है। ये सब पीछे पड़ गए इस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के, कहा हजरत आप फैसला करें, आप हिंदुस्तान में इस सब बड़े मुफ्ती। हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया भी मां याकूब साहब से पूछो, मां याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनसे ये सारे हजरात पढ़े हुए थे। मां याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद दिल्ली में थे, कॉलेज के प्रिंसिपल सब इज्जत करते थे, तो उस्ताद ज्यादा था सब इज्जत करते थे। उन्होंने कहा कल बताऊंगा। अगले दिन फरमाया कि मैंने रात बड़ी आहुजारी की, मैंने कहा परवरदिगार इसका खोल कोई कजिया ये क्या है, तो मैंने देखा कि एक गधा है वो उसका किबले की जानिब है और उस पे ये उल्टा बैठा हुआ है और गधा पीछे की तरफ चल रहा है, गधे का मुंह बैतुल्लाह की जानिब है, इसका मतलब यह है कि इस्लाम का नाम लेंगे। ये गधे पे भी उल्टा बैठा हुआ है तो गधे पे बैठना जलील होना है, और गधे पे भी उल्टा बैठने का मतलब गधे से भी बदतर है, बेअकल है, और गधा उल्टा चल रहा है उसका गधा इस्लाम का नाम ले तो पीछे चल रहे हैं। और किसी ने पूछा तो रोशनी भी थी, फरमाया हाँ रोशनी थी, नूर था। उसी का हजरत नूर कैसा था, फरमाया मैंने पूछा था तो कहा गया ये नूर हिदायत का नहीं है, ये रोशनी आग की है। तो उन्होंने कहा आग की तरफ जाना है तो फिर जहन्नुम है, ये दिखाया गया। होता ऐसे ही है कि आदमी समुंदर के किनारे से प्यासा वापस आ जाता है, इसलिए कि हिदायत जो है ना ये अल्लाह का खास इनाम है। अल्लाह कहता है यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। वयदरबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, और अल्लाह लोगों के लिए ये मिसालें बयान करता है, लोगों को समझाता है मिसाल के जरिए। मसलन कुरान कहता है एक मिसाल, वो कहते हैं लात के लोगों इस तरह ना हो जाना कि मिन बाद कुव्वत अनकासा, एक बूढ़ी हो गई औरत सारा दिन चरखा काट के धागा बनाती रही, जब शाम हुई तो अपने ही धागे को आग लगा के उठ गई, बर्बाद करके उठ गई। क्यों मिसाल दी, कहते हैं किसी के साथ नेकी करो ना तो दो काम ना करना, फिर लातुबतलु सदकातकुम बिल मन, नेकी अगर कर दिए ना तुमने किसी के साथ, फाका बर्दाश्त करके दूसरे को खाना खिला दिया, धूप में खड़े होकर दूसरे का काम करवा दिया, मोटरसाइकिल गाड़ी पे ले गए अपने रास्ते से हट के किसी को ड्रॉप कर दिया, ये जितनी नेकियां तुमने की है ना, देखो इन नेकियों के बाद बिल मन कभी जिसपे नेकी की है मिल जाए तो एहसान ना जतलाना, कभी ना कहना कि तुम वही हो ना, ये वही है, इसे नहीं पता इसके बाप के साथ मैंने, इसकी मां, इसके लातुतलु सदकातकुम बिल मन, नेकी करके कभी एहसान ना जतलाना। वल अजा, और दूसरे जिसके साथ नेकी की है ना, नेकी का बर्ता रख के उसे तकलीफ ना देना, किससे तो नेकी की थी यार मुश्किल में 10,000 इसे दिए थे, चलो आज बेकार ले लेते हैं, अच्छा जी ये 100 इधर से उठाकर उधर रख दो, तो बेचारा याद करता है किसी जमाने में 10,000 लिए थे, नहीं तो मैं कहां ईंटे उठाने वाला। ये उस औरत की मिसाल है, फरमाया जो सुबह से शाम तक चरखा काटे और शाम को आग लगा दे, तुमने नेकी की कुर्बानी दी, एहसान जतलाया, नेकी बर्बाद हो गई, तकलीफ दी कि नेकी का इवज चाहा, नेकी बर्बाद हो गई। अल्लाह मिसालें देता है, अल्लाह दूसरी जगह मिसाल देता है, अल्लाह कहता है सारा दिन बैठ के कहता है कि पानी आ जा, आ पानी आ, पानी के सामने बैठा हुआ है और पानी को कहता है कि आ जा मेरे मुंह में पड़ जा। वमा हुआ भी बाले गए, अल्लाह कहता है सारा दिन बैठा पानी को पुकारता रहे तो पानी कभी उसके मुंह में नहीं आएगा, प्यास लगेगी ना तो खुद जाएगा पानी पीने। तो उन लोगों की मिसाल है जो तरक्कियों के मंसूबे बनाते रहते हैं और करते कराते कुछ नहीं, ये हो जाए और ये हो जाए और ये हो जाए, उठ करो ना फिर हो जाए। प्यास सोनी लगी, हकीकी तड़प हो तो ये काम करना है, तो फिर आदमी जुट जाता है तो ये काम करके रहना है। हकीकी तड़प ना हो तो हमारी तरह हर साल मंसूबा दे दिया करो। अल्लाह कहता है जिन्हें काम करना होता है वो खुद चल के पानी पीने पहुंच जाते हैं, प्यास होती है ना मजबूर करती है। यज़रबुल्लाहु अल-अम्थाल लिन्नास, अल्लाह मिसालें देता है ताकि लोग समझें। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। कायनात का एक एक जर्रा, क्या बात कही अल्लाह ने दूसरी बात से कहा, मा तस्कतु मिन वरकतिन, पत्ता जो दरख्त से जुदा होता है और बीज जो जमीन की तह में फूटता है मिट्टी के अंदर, अल्लाह की किताब मुबीन हमारे इल्म में होता है, हम जानते हैं क्या हो रहा है। यौमुल कुदस के हवाले से बयान कर लो, सब मना रहे हैं यौमुल कुदस, टीवी पे प्रोग्राम यार देख लेना, इस्लामाबाद में आज का इश्तिहार लगे हुए यौमुल कुदस देख लेना, करना कराना कुछ नहीं है। कश्मीर और इसराइल 1948 से तबाह होना होने की दुआएं शुरू हुई है ना, तो अब क्या हो गया 60-70 साल हो गए 1948 से, 60-70-80 साल होने वाले हैं तकरीबन, ठीक है ना जी, ये वही है कि पानी की सजा मुंह में आ जाए खुद कुछ नहीं करते। रोजा सावन दो चार मिनट के लिए इफ्तार, भाई रोजे का ताल्लुक खालिस वक्त से है, रोजे का ताल्लुक किसी अजान से नहीं है, ना मगरिब से है ना फजर की अजान से है। ये जहालत छोड़ दो यार, ये जाहिलों की बातें, एग्जैक्ट किस वक्त से वो सादिक होती है, एक सेकंड होता है, यूं अंधेरा छाया हुआ है एक सेकंड में लाइट आ जाती है, वो सेकंड कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे जो उनके दिल को पता चल जाता था कि ये सेकंड अब आ गया। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक के बाद रमजान में खड़े होकर नमाज पढ़ा देते थे। किसी ने पूछा कितना वक्फा होता था सहरी बंद करने में और नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ाने में, उन्होंने कहा कि मुश्किल से 40-50 आयतें पढ़ते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा दी। 40-50 आयतों में 5 मिनट लग जाते हैं, इतना कौन है जो देख सके कि आजकल 3:15 पर अंधेरा था और 15 मिनट और 1 सेकंड पे लाइट आ गई। इतनी गहरी सही निगाह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की थी, निगाह से मुराद उसका एहसास करना, और ये अल्लाह ने उन्हें इनाम दिया, बाकी दुनिया में कोई नहीं। हम लोग तो सिर्फ मिनट से हिसाब कर सकते हैं कि इतने मिनट पर इतने सेकंड पर सुबह सादिक मुतवक्के है बस, और इतने मिनट पे सूरज डूब जाएगा और इफ्तार शुरू है, उस मिनट से 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद फैसला कर देता है। अगर फर्ज कर लीजिए 14 मिनट है, 15वें मिनट में सहरी खाएगा, कोई रोजा नहीं हो, और फर्ज कर लीजिए इफ्तार 20 मिनट पे है और इसने 19 पे किया है, तो कोई रोजा टूट गया नहीं हो। अजानों को छोड़ देना चाहिए, वो अब गुजर गए देहात के। अब पाकिस्तान और सऊदीया में रोजे का फर्क होता है इस लिहाज से, पाकिस्तान में 19, सऊदीया में 20, उन ममालिक में ताक रातें शुरू हो जाती हैं। लैलतुल कद्र हमारे यहाँ हर जगह की लैलतुल कद्र अपनी है, हर जगह की लैलतुल कद्र अपनी है, और ये अल्लाह का एक निजाम है, उसने भेजने हैं फरिश्ते और जिब्रील अमीन को, मुश्किल क्या पड़ी है यार, सीधी तरह आप को इबादत करो, आए आए ना आए ना आए, उनकी मर्जी है, हाथ मिलाया ना, जिंदगी के तमाम वो काम जो अपने इख्तियार में ना हो, अपने इख्तियार में ना हो और उसकी ज्यादा जरूरत भी ना हो तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, अपना इख्तियार ही नहीं है, मरना तो है ही, तो क्या घर में घुटके बैठ जाएगी पता नहीं कब मौत है, यार जिस वक्त आनी आ जाएगी कोई नहीं पूछेगा। गैर इख्तियारी कामों को अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। मैं मियां बीवी में कभी कभार नोक चोक हो जाती है, मियां फोन पर बीवी को कह दे कि तुमने फलां काम किया तो तुम फारिग हो, डराने की खातिर, और काम करे तो एक तलाक हो गई या नहीं। मुश्किल है मसला। ये जो अल्फाज है ना, तारीख किया, ये तलाक है। पहले भी किसी ने पूछा था। जी हाँ, और ये जो बात है ना कि डराने की खातिर तलाक हो गई, तो इसमें एक गुंजाइश है कि उस मर्द से कसम ली जाए कि अल्लाह की कसम खाओ तलाक की नीयत नहीं थी। अगर कसम खाता है बीवी उसके साथ रहेगी, लेकिन ये खेल तमाशे में ना ये काम करने नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन जद्दुन जिद्दुन व हज़लुन जिद्दुन, तीन बातें ऐसी हैं जो हंसी मजाक में भी हो जाएंगी और जानबूझ के करोगे तो भी हो जाएंगी और मजाक करोगे तो भी हो जाएंगी। आपने बताया निकाह, निकाह में लड़के और लड़की निकाल के तो मेरी बीवी बनती है, उसका मैं तुम्हारी बीवी हूं, दो आदमियों ने सुन लिया ना, ये मियां बीवी हो गए, मजाक था हो गए। अब तलाक दे और ये इद्दत गुजारे, ये उसका हक मेहर अदा करे, और इद्दत गुजारने के बाद फिर वो दूसरा निकाह कर सकती है। तलाक का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक में भी हो जाएगा। गुलाम और बांदी का आजाद करना, आपने ना मजाक में भी कह दिया ना कि मैंने तुम्हें आजाद किया, वो आजाद हो। एक तलाक के बाद रजू कर ले तो तलाक खत्म हो जाती है। तलाक खत्म इस माना में हो जाती है कि औरत उसके लिए अब जायज हो गई, लेकिन असल में निकाह के वक्त जो निकाह पढ़ाता है वो तीन पर्चियां उसके हाथ में दे देता है कि मियां सारी उम्र के लिए अब ये तीन पर्चियां, पहली तलाक दी तो फाड़ के पर्ची एक बैंक की। अब ये कहे कि फिर वो पर्ची रिन्यू हो जाए, नहीं होती। अब दो ही जिंदगी भर के लिए उसके लिए दो इख्तियार बाकी, 10 साल बाद फिर उससे आया उसे कहा एक तलाक दी, तो दूसरी तलाक वाकई हुई है, पहली नहीं। 20 साल बाद फिर उसने कह दिया तो तीसरी तलाक वाकई हुई है, पहली नहीं। तो तलाकें रजू से मुराद ये होता है कि निकाह फिर कायम हो गया, ये मुराद नहीं होता कि उसको तलाक का हक दोबारा से मिल जाए। फर्क करना चाहिए तंसीख निकाह और खुला में फर्क है। औरतें खुला को तंसीख निकाह समझी कि निकाह की कंसलेशन हो गई, निकाह की कंसलेशन नहीं होती, खुला हो जाता है। खुला अलग चीज है, निकाह का टूटना अलग चीज है। डिग्री दे दे अदालत इस बीवी का खुला हो गया तो निकाह नहीं टूटा। ये जो ऐसे करते हैं ना मर्द और औरतें के खुला ले आए, खुला के बाद निकाह नहीं टूटता। फस्ख निकाह, तंसीख निकाह एक अलग अमल है, खुला होना एक अलग अलग अमल है। खुला से ये फायदा हो गया कि औरत का हक साबित हो गया कि तलाक का जो मुतालबा करती है ठीक है, बस अब शौहर तलाक दे, शौहर तलाक नहीं देता औरत को तलाक नहीं होगी। इसका फिर तरीका है, प्रोसीजर है कि कोर्ट उसे बुलाए, सजा दे, या मोहल्ले के लोग बैठे या पंचायत बैठे या उलमा बैठे और फिर उस पर जोर दें कि तलाक दो इसको। वो एक अलग चीज है, लोगों ने खुला और निकाह की कंसलेशन दोनों को एक ही कर लिए, दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल इसी तरह लोग समझते हैं एक तलाक दे दी तो अब एक तलाक रिजू हो गया तो अब तीन पर्चियां फिर मिल गई, कुछ भी नहीं। कोई शख्स जमीन के दो प्लॉट्स का मालिक है और नीयत ये थी कि एक प्लॉट पे जाती घर तामीर करूंगा और दूसरे को बेचकर घर पे उठने वाले अखराजात अदा करूंगा, इन प्लॉट्स पे जकात की अदायगी के मुतल्लिक शरई हुक्म। बहुत इख्तलाफ है मुफ्ती हजरात का। कुछ कहते हैं दोनों पे जकात नहीं देगा क्योंकि उसने सारा सरमाया मकान ही के लिए रखा है। कुछ का ख्याल है कि एक पे जकात दे, जहां मकान बनाना है उस पे ना दे, दूसरे पे दे। और कुछ कहते हैं दोनों पे देगा, इस पे भी इस पे भी। और आम तौर पे मुफ्ती हजरात इस तरफ गए हैं कि वो कहते हैं जो प्लॉट घर के लिए है उस पे तो जकात आएगी नहीं, लेकिन दूसरे प्लॉट पे होनी चाहिए। और वजह उसकी यह है कि एन मुमकिन है कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो उसी प्लॉट को बेच दे। है तो आखिर वो कमर्शियल ना, किसी भी वक्त बेचा जा सकता है, मुमकिन है घर कहीं और से बना ले और कल को 10 साल बाद 20 साल बाद इसे बेच के इस रकम को इन्वेस्ट कर दे, बच्चों की शादी में डाल दे, तो कहते हैं दूसरे पाक पे ज़कात देनी चाहिए, लेकिन गुंजाइश हर तरफ है, आदमी अपने हालात देखे। गजरा हिंद में शरीक होने वाले अहले ईमान को अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत दी है, वल्लाहु आलम ये गजरा कब बर्पा हो गया, लेकिन हम आज अपने जीते जी किस तरह इस मारता हक व बातिल में शिरकत कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पर न सही किसी अमल के जरिए। क्या ऐसी किसी अमल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है? ये जो गजवा हिंद है ना जी, आप ये जो फरमाया ना कि गजवा कब बर्पा होगा, बड़ी महरूमी है और अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी पैदाइश से पहले हो गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में हो गया था। हिंदुस्तान पे जो पहला हमला हुआ था ना, वो गजवाए हिंद ही था। ये सारे दाइश वाले और तालिबान और दूसरे इस हदीस को लिए फिरते हैं कि अब होना है हमला। मुद्दत गुजर गई, बेचारे मिट्टी में मिल गए जिनने किया और जिन पे हुआ। ये क्यों ऐसी हदीसें सुना के लोगों को गुमराह करते हो? ये दाइश वाले सबसे ज्यादा इसको करते हैं ताकि लोग गुमराह हो। हिंदुस्तान ये इस पे हमला करना है, सिखाने हैं। रोजे की हालत में इंसान सो गया, उसको उस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। फितरा अगर किसी ऐसे बंदे को दे दिया जो सफर में जा रहा है, उसके पास किराया नहीं है और उसे ना बताया जाए, तो फितराना बिल्कुल अदा हो गया। फितराना बात बयान करने की जरूरत नहीं। फितराना तो ऐसी रकम है कि सैयद को भी दी जाए तो भी जायज, फितराना अगर सादात को दिया जाए तो भी जायज। अल्लाह ताला ने कतई ताल्लुक से मना फरमाया है, मगर जो लोग फितने वाले हैं उनके बारे में क्या हुक्म है, उनसे क्या किया जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ मियां, उर्दू नहीं लिखनी आती? आपके ऊपर साथ डाला हुआ, ये साथ क्या हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हुए कलम टूटता है या हाथ टूटता है? और उर्दू में जमायर के साथ भला दुआएं इस्तेमाल करते हैं, ये उर्दू है कि पंजाबी है? जब मरी से तो नहीं उठ के आए, ये क्या बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, अम्मी आयशा ये करती थी, अम्मी का ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उनके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करो जो उनकी इज्जत अजमत और शान को जाहिर करते हैं। ये कहना चाहिए जैसे रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितने के जमाने में क्या करते थे। क्या आपने लोगों को जमीन से निकाल दिया था? क्या आपका तर्ज अमल ये था? ये है सही उर्दू की इबारत, हमेशा जिस जुबान में दीन का काम करना है ना, उस जुबान का अदब लिटरेचर पढ़ना चाहिए, वरना काम नहीं होता। या आप किसी उर्दू वाले फर्ज के लिए कोई हिंदू उर्दू में बात करता है, आप जाके कहेंगे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हो, कहेगा सलाम है साहब, तुम्हें तो जुबान ही बोलनी नहीं आई। बहुत कोफ्त होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों को मुल्क बदर किया उनके फितने की वजह से, अहरम लोग अपनी रिश्तेदारियों को किस तरह कायम रखें, एन दो चश्मी है रे और मी, ये शायद हम लिखने की कोशिश की गई है। देखो भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी की बुनियाद पे किसी को मुल्क बदर नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क बदर करते थे जब बदकारी की सजा देते थे, तो कभी कभी सजा में शिद्दत पैदा करने के लिए फरमाते थे कि गुरबत आमिन, एक साल तक तुम हमारे इलाकों में कहीं नजर नहीं आओ। खिलाफत राशिदा में सैयदना उमर रजी अल्लाह ने एक मरतबा किया था। सैयदना उमर रजी अल्लाह ने एक ईसाई पे हद जारी की और मुल्क बदर कर दिया, वो मुसलमान हो गए थे। उसने कहा अमीर मोमिनीन मुझे मुल्क बदर न करें, मैं ईसाई हो जाऊंगा दोबारा, आप कह रहे हैं मुझे परवाह नहीं। वो चला गया और ईसाई हो गया सैयदना उमर रज़ी अल्लाह को, लेकिन अफसोस बड़ा हुआ। फरमाया काश मैं उसकी बात मान लेता, कम से कम कुफ्र से ही बच जाता। لیکن اللہ کی قسم میں آئندہ کسی کو اپنے مکھ سے نہیں نکالوں گا. رشتہ داریوں میں یہ نہیں ہوتا تھا. رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شدید سے شدید رہی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھوڑا ہی تھا کہ مکہ سے کسی کو نکال دیں, حکمرانی تھوڑی ہی تھی. مدینہ منورہ میں کسی کو نکال دے تو کس کو نکالا, وہاں رشتہ دار ایسے تو نہیں تھے, وہاں تو پنشمنٹ جرم حد نافذ کیا. ہمارے نزدیک مثلاً 100 درے ہے, شافیوں کے نزدیک 100 درے بھی ہے اور ملک سے نکال دینا بھی. یہ چیز عقبہ بن بھی معیط, اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور شادی ہو گئی تھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی. یہ عقبہ بن بھی معیط جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش میں بھی تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جزا چلتے پتھر مارتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا مذاق اڑانا اور مسلمانوں کو ستانا اتنا شدید تھا کہ کسی کو پتا نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا ہے. جب بدر کا معرکہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی یہ لو تلوار, فضرب انہوں کے اس کی گردن اڑا دے, وعوف بنظر نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منت نظر جو اس سے مانی تھی اسے پورا کر. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت میں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں مکہ میں نظر مانی ہوگی کہ کبھی یہ کافر میرے ہتھے چڑھا تو پھر میں اس سے مزہ چکھاؤں گا. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلوار کھینچی مارنے کے لیے تو اب اسے یاد آئیں ساری چیزیں. اس نے کہا من لسبیہ, مجھے قتل کرتے ہیں میری اولاد کا کیا بنے گا؟ بلا نار, جہنم میں گئے تم. بہت سخت جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں نار, جاؤ جہنم. ملک بدر کر نہیں سکتے تھے, یہ سزائیں تھیں. تعلیمی نظام کا نصاب ہونا چاہیے, کون کون سے مضامین اور زبانیں اس میں شامل ہونا ضروری ہیں. جتنے مدارس ہیں نا, جتنے ہمارے دین کا کام کرنے والے ہیں نا, انہیں ایک مغربی زبان پڑھانی چاہیے. اس کا تفصیل سے جواب نہیں دے سکتے ہم, نہ وقت ہے. اگر آپ کے پاس 15-1 کروڑ ہوں تو پھر آئیے, پھر بیٹھ کے بند کمرے میں بحث کریں. جتنے مولوی علماء پڑھتے ہیں نا, انہیں ایک زبان اور سکھانی چاہیے, فرینچ, انگلش, چائنیز, جیپنیز, اسپینش. اسپینش دنیا میں بہت جگہ بولی جاتی, جرمن. ایک زبان مولوی صاحب کو مغربی آنی چاہیے فلوئنٹلی, تاکہ اسلام قرآن جا کر ان کی زبان میں پیغام پہنچائے. اور جتنے کالج یونیورسٹیز ہیں ان سب میں 3-4 سبجیکٹس کا اضافہ کرنا چاہیے, کچھ نکال دینی چاہیے. ہر بچے کے لیے لازمی ہونی چاہیے کہ عربی پڑھے. 2-3 سال عربی کا نصاب ہو گیا, 6th-7th سے لے کے ایف ایس سی تک پورا قرآن پاک, ناظرہ پڑھنا, تجوید پڑھنا اور قرآن کو معانی سے پڑھنا 6 سال میں. 1 سال میں 5 بار بھی پڑھے گا, پڑھ لے گا اور فرقہ واریت جان توڑ دے گی. مولوی صاحب آیت کچھ پڑھتے ہیں, ترجمہ کچھ پڑھتے ہیں, جب ڈائریکٹ کو پڑھا لکھا ہوگا نا وہ بھی کتاب اٹھا کے دے گا, مولوی صاحب غلط بات کرتے ہو, تو ہمت نہیں بڑھے گی پھر اپنے فرقے اور دوسرے فرقے. تیسرا اضافہ آہستہ آہستہ خود بخود ہی ہو رہا ہے, ہمارے مدارس کے بچوں کو کمپیوٹر آنا چاہیے. اب دنیا کمپیوٹر کی, اگر تعلیم 25% دینی ہے تو 75% تربیت کرنی ہے, کیونکہ تعلیم سے جو غرور پیدا ہوتا ہے اور تعلیم سے جو عقل کا غلط استعمال پیدا ہوتا ہے, اس زہر کو مارا جائے. یہ ملک جو توڑا ہے نا, پڑھے لکھوں نہیں توڑا ہے. اس ملک میں جو تباہیاں مچ رہی ہیں, یہ پڑھے لکھوں ہی کا انجام ہے. یہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہی بم بناتے ہیں. जो राजा बाजार में सब्जी बेचता है उसके बारे में गुमान भी नहीं गुजरता, ये सब तालीम याफ्ता ही है। और जो सरे महल के मालिक, उनके गवाह और वजीर आजम और क्या क्या होता है, और जिनके अकाउंट सब निकल रहे हैं ना, वो पता नहीं पानामा लीक्स में, ये सब पढ़े लिखे ही हैं, ये माशाल्लाह ग्रेजुएट्स ही हैं और पीएचडी डॉक्टर ही हैं, इनके इनका जहर नहीं मारा गया। अब तो खीरे ऐसे ही खा लेते, पता नहीं होता होगा, लेकिन पुराने जमाने में खीरे को जरा सा मलते थे ताकि उसका जहर सफेद झाग निकल जाए। ये जहर जो इल्म का है ना, ये इल्म का जहर किब्र है। हम चुमा दिगरे नहीं, जैसा मैं हूं ऐसा कोई है ही नहीं। और इस इल्म का जहर अकल का गलत इस्तेमाल है। ये जितनी बेवा औरतें लुटती हैं और जितनी बच्चियों की नाजायज शादियां होती हैं और जितने ये मासूम लड़के भी शादियों में मारे जाते हैं, ये सब काली यूनिवर्सिटी का इल्म ही है। लड़के का बाहर चल गया तो उसका, लड़की का चल गया तो उसका, ये सारे पढ़े लिखे लिखोई के अफसाने, समझे। 25% अगर इल्म देना है ना यूनिवर्सिटी बना के, 75% तरबियत करनी है कि बेटे मोहब्बत इश्क और ये भूल जाओ, सीधी तरह मुंह लग के काम करो, जो काम करने का है जब वक्त आया तो करते रहना, ये है तरीका। इसलिए मजामीन कौन से बढ़ाए जाएं, जुबानें कौन सी, ये बुनियादी तब्दीलियां जो हमारे निसाब में होनी चाहिए। अगर हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे डॉक्टर्स कुरान, एक छोटी सी किताब जो मसाइल, मसलन इब्तिदा में पाकी नापाकी और नमाज के मसाइल, बस काफी है। इससे ज्यादा आप हज क्यों पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे ने कोई हज करना है, मत पढ़ाए उसे हज। बड़ा हो जाए, ज़कात आ जाए, उसे ज़कात सिखाइए कि ज़कात कैसे देते हैं, ज़कात का निसाब क्या है। हज पे जाना है उसके लिए एक स्पेशल कोर्स अवेडी जाइए, कोर्स कीजिए, पब्लिक करे कोर्स, हज पे जाओ, बस खत्म। हज को निसाब नहीं क्यों पढ़ाना है, वजह छोड़ दो ना, बच्चों का वक्त जाएगा। सिलेक्टिव ये स्टडीज होती दुनिया भर में होती है, ये करवानी चाहिए। इसी तरह और चीजें भी, बगदाद के तालीमी निजाम की क्या खसूसियात थी। बगदाद का तालीमी निजाम कोई खास नहीं था, ऐसे बेवकूफ से लोग थे, बस उस निसाब तालीम से बूली सीना पैदा हो गए, इमाम गजाली पैदा हो गए, फाराबी पैदा हो गए, किंदी पैदा हो गए और अलबैरूनी पैदा हो गए हैं, और महमूद गजनवी भी, और बाबर भी पढ़ाया, अजीब बात है। और कौन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मुस्लिम निशापुर के, ये पुराने निसाब थे। वो ऐसा जबरदस्त निसाब था कि वही निसाब पढ़ा हुआ बच्चा हकीम भी बनता था, वही निसाब पढ़ के स्पेशलाइजेशन करके पटवारी भी बनता था, वही निसाब पढ़ के डीसी भी बनता था, वही निसाब पढ़ के शहजादा बादशाह भी बनता था, वही निसाब पढ़ के मुहद्दिस और मुफस्सिर भी बनते थे। बेसिक चीजें हर एक बच्चे के लिए एक जैसी थी ताकि इंसान तालीम हासिल करके इंसान बने, तालीम बराए मुआश नहीं थी। फिर उसके बाद जब थोड़ा बहुत इंसान बन जाता था ना, तो उसे कहते थे अब स्पेशलाइजेशन करो, हदीस में करनी है पढ़ो ये, तफसीर में ये, तिब में करनी है ये चीजें आप पढ़िए, इंजीनियरिंग में करनी है ये चीजें पढ़ो, तामीर में मुहंदस ये करनी है ये चीजें पढ़ो। मतलब तामीर में जो बच्चा जाता है ये सब कुछ पढ़ पढ़ा के उसे सिखाते थे कि छत कैसे डालना है, सर्द इलाकों में छत कैसे डालना है, गर्म इलाकों में छत कैसे डालना है। लाहौर के जो मिस्त्री थे वो दूसरी जगह काम नहीं कर सकते थे, इसलिए कि लाहौर में शदीद गर्मी थी ना, तो ये गर्मी के छत ऐसे घरों के डालते थे कि ये जो छत है एक ये और इसके दरमियान गैप और उसके ऊपर एक और छत और छत के ऊपर एक और लेयर, तो नतीजा ये कि दिमाग ठंडा रहता था, तलाक नहीं देते थे जल्दी जल्दी, आराम से सोते थे। अब वो मैंने कई लोगों से पूछा, यार वो छत लिखा हुआ तो है कि पढ़ता है, एक आदमी नहीं मिला जो लाहौरी छत डाल सके। और हालत ये थी कि लाहौरी फिरते थे कि यार कोई छत्तीस वालों हमसे मुल्तान जनूबी पंजाब सब एक ही तरह की तहजीब थी, मिटते ही खत्म हो गई। अब आपके यहां एक मस्जिद इस्लामाबाद में बन रही है, कभी इसे देखना। सुर्खी जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होती, सुर्खी चूना और मिट्टी कुछ हिस्से लेके वो उसका मसाला बना के एक मस्जिद बना रहे हैं। न सरिये का इस्तेमाल है न सीमेंट का इस्तेमाल है। जो बना रहे थे हमने वैसे पूछा, हमने कहा चंदा किससे करना है, कहने जरूरत क्या, हमने कहा सरिया सीमेंट ना मांगा उनका इस्तेमाल ही नहीं करना, कि कैसे थे उन्होंने तफसील बताई। ये ढोकड़ू मोड़ है ना, उससे पेट्रोल पंप है, पंप से जो इस्लामाबाद की तरफ टन लेते हैं, एक रोड तो निकल जाती है उधर को फैजाबाद को और एक रोड इधर इस्लामाबाद की। जू ही आप टर्न इस्लामाबाद पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे पहले पहले खानका लिखा हुआ था, अब टीवी प्रोग्राम की वजह से हमारे दोस्त है उन्होंने खानका मिटा दिया, मस्जिद लिखी हुई है। ये मस्जिद जो बना रहे हैं ना, ये मस्जिद खालिस मुगलों के स्टाइल की बन रही है, ना उसमें एसी लगने, ना उसमें सीमेंट है, ना सरिया है, कुछ भी नहीं है, और सादा सी मस्जिद और ऐसी ठंडी है कि कमाल की ठंडी। कुरी रोड पे एक मस्जिद है, ये मस्जिद ताबईन के जमाने की है, सहाबा रज़ियल्लाहु को फौरन बात की, अल्लाह के बंदे यहां कहीं आ गए थे, उन्होंने एक मस्जिद बनाई है। जून जुलाई की इस गर्मी में आप कुरी रोड पे जाएं, आप पसीने में नहाए हुए जू ही अंदर जाएं तो आदमी कहता है यार एसी कहां लगा हुआ है, एसी एसी कुछ नहीं, इतनी ठंडी मस्जिद। अब तो जमीन में धस्ती चली जा रही। आखिरी रजी अल्लाह सहाबा इकराम रजी अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा अलैहिस्सलाम किसी के लिए, इसे आइंदा पे छोड़ दे, प्यास लग रही है बहुत भाई, माजरत हूं, आइंदा इंशाल्लाह।